आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 10। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो सिद्धाणं नमो आयतिदानं नमो वैच्छायानं नमो लोये सौवसाहूनं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय रदिवीरम् आत्मानुशासनमहम् वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है और उस पर क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी के जो प्रवचन है, ये आत्मानुशासन प्रवचन पढ़ते हुए भी हम पृष्ठ संख्या 49 पर आ गए। 49। कल हमने 8 नंबर का श्लोक पढ़ा था तो वहां तो ये बात बताई थी कि ये जग में प्रसिद्ध है कि पाप से दुख होता है और धर्म से, धर्म यानी शुभ भाव से सुख होता है, इसलिए पाप को छोड़ना चाहिए और हमेशा धर्म में विचरना चाहिए, इस तरह से बात हुई थी। तो पापों के 6 प्रकार के भेद उन्होंने बताए हैं। सबसे पहला है मोह, फिर उसके बाद काम, फिर क्रोध मान माया और लोभ। इस तरह से यहाँ बात हो रही थी। अब यहाँ 49 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, क्रोध नाम के पाप की बात यहाँ चल रही है। यहाँ तो ये बात बताए रहे थे कल कि पर पदार्थ इस रूप परिणमे कि वो हमारे कल्पना के जो हमारे विषय उसमें वो बाधा रहा है, तो कहते उसके प्रति क्रोध करता है। यानी जीव जो चाहता है और उसे ऐसा लगता है कि मेरे चाहने के अनुसार क्यों नहीं हो रहा है, तो कहते नहीं इसके कारण नहीं हो रहा, इसलिए उसके प्रति उसको क्रोध आता है, ये कह रहे हैं। उसके बाद ये भी बताई थी कि जो हमारे जो विषयों के प्रति हमारे जो लगाव है वही हमारी विडंबना है, वही हमारी आपदा है, और उसके बीच में जो बाधा डाले, यानी विपदा हमारा शत्रु और उसमें बाधा डाले उसका शत्रु, तो शत्रु का शत्रु मित्र होना चाहिए, फिर भी उसको शत्रु मानकर ये जीव क्रोध करता है। 49 पेज पर एक पैराग्राफ पढ़ा था, अभी हम नीचे का पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। क्रोध ज्वाला में सकल गुणों का दहन, एक क्रोध रूपी अग्नि है और उसमें सभी गुणों का दहन होता है, वो जल जाते हैं, ये बात कह रहे हैं। 49 पृष्ठ पर बात हो रही है, नीचे का पैराग्राफ अभी शुरू करना है। क्रोध ज्वाला में सकल गुणों का दहन, भैया क्रोध में रहे सहे सभी गुण भस्म हो जाते हैं। कोई दूसरों का उपकार करता हो, दूसरों की मदद करता हो, वह किसी समय एक बार क्रोध कर डाले तो उसका उपकार, उसका आभार प्रायः सब भस्म से हो जाते हैं। क्या कहते हैं? यानी कोई दूसरों की बहुत सारी मदद भी करता है, हम ऐसे भी देखते हैं ना, घर में भी कहो या बाहर भी जो है, हम एक दूसरों के प्रति कुछ ना कुछ उपकार करते हैं, कुछ ना कुछ उसके प्रति सद्भावना से अपना व्यवहार होता है, तो एक बार उसके प्रति क्रोध कर जाए तो पहले वाला सब जीव भूल जाता है। वो पहले की बात भूल जाता है, वो भूल जाता है, वो जब शांति दी थी तब अच्छा लगता था, किसी ने हमारी हेल्प की तो जब तक हेल्प कर रहा था बहुत अच्छा रहा, और उसी ने कभी एक बार डांट दिया कुछ तो वो हेल्प सब भूल जाते हैं, वो डांट ही खाली ख्याल में रहती, होता है कि नहीं ऐसा? ये जो अपराध वगैरह दिखाते हैं ना, वो नौकर किसी को, नौकर को क्रोधवश कुछ बोल दिया तो ऐसा वो मन में ठान लेता है कि कुछ ना कुछ अपाय कर देता है, उनके बच्चों को कहो या उनकी जो कुछ करना है, ये पहले बहुत सारी अच्छी बातें की है उस पर भी पानी फिर जाता है, यही कर रहे सारे गुण, यानी जो कुछ अच्छाई थी वो सब भस्म हो जाती। यही कहना चाहते हैं ना। किसी समय एक बार क्रोध कर डाले तो उसका उपकार, उसका आभार प्रायः सब भस्म से हो जाते हैं। यह तो है दूसरे के विषय की वार्ता, किंतु अपने आप में भी जो गुण बनाए जा सके थे, जैसे क्षमा, संतोष आदि गुण, वे सब गुण इस क्रोध की ज्वाला में भूनकर खाक हो जाते हैं। यानी अपने ही परिणाम कैसे संकलेश परिणाम हो जाते हैं, स्वयं को ही क्रोध आया तो अपने ही जो शांति वगैरह वो भंग हो जाते हैं, ये कहना चाहते। जो पुरुष गंभीर होता है, ज्ञानवान होता है, वह क्रोध का शिकार नहीं बनता है। क्रोध तो क्षणिक है, इसके बहकावे में आकर अपनी बर्बादी कर लेना मूर्खता है। ये जो कोई अपराध वगैरह देखते हैं, किसी ने किसी का खून कर दिया, किसी ने कुछ जो कुछ बातें, तो क्रोध के वश तो मुख्यतः से हो जाती है, वो तो क्षणिक है उसका आवेग, परंतु वो भुगतना पड़ता है बारंबार, पूरे लाइफ टाइम तक। यह क्रोध करना भी पाप है, इससे क्लेश ही भोगने में आते हैं। वैसे सारे ही कषाय पाप ही है, ऐसा कुछ नहीं कि क्रोध बुरा है और बाकी सब अच्छे, ऐसा ये बात नहीं है। एक एक को समझा रहे क्रोध की बात है, इसलिए क्रोध की बुराई पहले बता रहे क्या होती है उसकी। घमंड पाप, मान वाली बात है, क्रोध मान की बात है ना, घमंड वाला पाप। घमंड का परिणाम भी क्लेश का कारण ही है। जिसे अपनी यथार्थ महत्ता का बोध नहीं है, वही घमंड कर पाता है। घमंड किस बात का होता है? परद्रव्य के संयोग से ही वो घमंड कर देता है अपने, वह तो स्वयं चैतन्य रूप है, उसकी क्या घमंड करना है, तभी तो चैतन्य ही है। घमंड क्यों हो रहे हैं? या तो पैसे से बड़ा होगा, रूप से बड़ा होगा, ईश्वर से बड़ा होगा, कोई अधिकार होगा उसका, वही वही है, मद वही है, घमंड वही है। इन्हें यथार्थ महत्ता, मैं तो चैतन्य स्वरूप है, पूरी दुनिया को विश्व को जानने वाला हूँ, ये उसकी सही महत्ता नहीं आ रही है, ये झूठी महत्ता के वश होकर घमंड कर रहा है। जिसे अपनी यथार्थ महत्ता का बोध नहीं है, वही घमंड कर पाता है। मेरा स्वरूप तो ज्ञान रूप है ना, जानने की प्रकृति है, प्रकृति ने स्वभाव ही मेरा जानने का है। अब जानने की वृत्ति में सीमा क्या हो सकती है? हम 10 मील तक का ही जाने, क्या ऐसा मेरे ज्ञान का स्वभाव है? मैं इतने समय पूर्व या भविष्य की बात जानूं, क्या ऐसी सीमा होना मेरे ज्ञान का स्वभाव है? देखो, जो स्वभाव होता है उसमें कोई मर्यादा नहीं होती। मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ, ये आईने का, दर्पण का। आप बाजार में दर्पण लेने जाते हो, उसमें कुछ लिखा होता है कि इसमें 10 चीज़ें झलकेगी, इसमें 25 झलकेगी, इसमें 50 झलकेगी, ऐसा कोई होता है? लिखा नहीं होगा तो वो तो बताता होगा ना दुकानदार, क्या होता क्या है। दर्पण है तो उसे झलकाना उसका स्वभाव है, तो जितने कोई चीजें है सामने वो सब झलकेगी, ऐसा नहीं कि किसी में कम झलकेगी, किसी में ज्यादा झलकेगी। स्वभाव तो उसी को कहते हैं कि जो अमर्याद होता है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए कहते कि भविष्य का ही जाने, वर्तमान का ही जाने, ऐसी भी लिमिट नहीं। ज्ञान का जो स्वभाव है, तीनों काल का जाने और पूरे लोक अलोक को जाने, ये उसका स्वभाव है, यानी उसमें कोई सीमा नहीं होती। यद्यपि वर्तमान में उपाधिवश ऐसी स्थिति बन गई है, हम कहते हैं आप कहाँ जान रहे हो पूरा विश्व, तो वर्तमान की उपाधि, उपाधि का अर्थ होता है कर्म का उदय। तो वर्तमान में आपका सूक्ष्म ज्ञान है, तो यहाँ कहिए उपाधिवश ऐसी स्थिति बन गई है, हम इतने समय से अधिक पहले की बात नहीं जान सकते हैं, अथवा इतनी अवधि से दूर की बात नहीं जान सकते हैं, यानी बहुत दूर की बात हमें नहीं जानने में आ रही है, ये हमारी सीमा है, कमजोरी है, कमजोरी है, कमजोरी है। यह एक परिस्थिति है, व्यवस्था है, किंतु जिस आत्मा में जानने का स्वभाव पड़ा हुआ है, उस आत्मा के जानने में सीमा हो ही नहीं सकती। यानी जानना हो रहा है ना अभी तो वर्तमान में, भले कम भी हो परंतु जानना तो हो रहा है। कोई कहेगा हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा इतना तो समझ में आया ना, इतना तो जान लिया उसने अपने से। तो जानना जिसका स्वभाव है, थोड़ा भी अभी जान रहा है, उसका अर्थ क्या है? जानने का मेरा स्वभाव है। अभी वर्तमान में कम जान रहा उसकी बात नहीं लेना, उस स्वभाव पर चले जाना। वर्तमान में जानने का कार्य हो रहा है पर्याय में, वो क्या सूचित करता है? ये जानने का मेरा स्वभाव। अब उस स्वभाव में कोई सीमा नहीं होती, तो स्वभाव कैसा होगा? मुझे तीन काल तीन लोक पूरा लोक अलोक सबको जाने ऐसा स्वभाव, यही कह रहे हैं यहाँ पर कि वर्तमान थोड़ा भी जान रहे हैं परंतु आत्मा में जानने का स्वभाव पड़ा हुआ है, उस आत्मा के जानने में सीमा हो ही नहीं सकती। क्योंकि इसके जानने का स्वभाव है तो यह इस उपाधि व्यवस्था से मुक्त हो जाएगा। यदि स्वभाव में पड़ा है तो उपाधि मिट जाएगी उसकी, यानी वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, स्वभाव उसका प्रकट होगा। केवल ज्ञान पुंज रूप बरतेगा तो यह समस्त लोक अलोक को एक साथ स्पष्ट जान सकता है। इतना महत्व है मेरे स्वरूप का, किंतु इसका जिसे पता नहीं है वह पाई हुई कला पर, देखो पाई हुई कला ने वर्तमान में जो पर्याय प्रकट है उतने से वो संतुष्ट, उतना ही मैं हूँ मान लेता है। पाई हुई कला पर या कला ने कोई जो लौकिक कला भी उसमें समझ सकते हैं, जो कोई हमारे जो कोई विशिष्ट हमारी जो हुनर कहेंगे जिसको, किसी में अपना दिमाग चलता है, आर्ट उसकी जो कुछ है, चतुराई पर, स्थिति पर, संपदा पर अपने को महान मानकर घमंड किया करता है, यानी वो स्वभाव की महात्म्य नहीं उसको आती है, तो वर्तमान में जो कुछ थोड़ी सी कला वगैरह हासिल है उससे उसका घमंड करता है। इस मान में भी अपनी सुध नहीं रहती है, यह भी महापाप है। जो महापाप है अपनी सुध नहीं रहती, अपना ही इनकार करता है, अपनी हिंसा कर दी उसने, अपने अस्तित्व को माना ही नहीं है, यानी आत्मा को ही मिटा दिया उसने और बाहरी चीजों के कारण मैं हूँ इतना अपना स्वरूप मान लिया, ये तो महान हिंसा है, महान पाप है, यह भी महापाप है। इससे मिलता क्या है इस जीव को? कुछ नहीं, बिगड़ता सब कुछ है। मायाचार पाप, देखो ये क्रोध मान माया लोग ऐसे लिए है कि जब आत्मा का अभी उसको पता नहीं है तो ये सारे महापाप में ही गिनने आएंगे। एक पाप है मायाचार, मन में कुछ है, वचन में कुछ, कह कुछ रहे, करेंगे कुछ, यह एक बहुत भीतरी विडंबना है। बताया गया है जैसे माला में जो दाने होते हैं उनमें छेद होते हैं ना, किसी दाने में यदि टेढ़ा छेद हो तो उसमें सूत का प्रवेश नहीं होता। आपने शायद कभी वो माला पिरोई होगी उसमें से धागा, तो आपको पता होगा कि उसमें कभी कभी टेढ़ा होता है, ये जो नौकार वाली होती है ना, कभी टूट जाती है तो उसको हम पिरोने का प्रयत्न करते हैं तो कोई ऐसा टेढ़ा होता है तो नहीं जाता है बराबर। सूत में दाने पोए जाते हैं ना, तो वक्र छेद वाले दाने में तो सूत का प्रवेश नहीं होता है। इसी प्रकार वक्र हृदय में मायाचार से भरे हुए इस अंतरंग में, वक्र हृदय का अर्थ क्या है? टेढ़ा मन, वक्र हृदय का अर्थ है मायाचारी। इस अंतरंग में यानी अंतकरण में धर्म का सूत्र प्रवेश नहीं कर पाता। सूत्र के दो शब्द अर्थ है, सूत्र यानी धागा, और धर्म के सूत्र यानी जो भगवान की जो वाणी है, जो आगम है, उसको भी सूत्र कहते हैं, धर्म के सूत्र, यानी वो भगवान का उपदेश जो है जिनेन्द्र भगवान का, वो हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करता। क्योंकि इसके मायाचारी सोचने की ऐसी आदत ही ऐसी है कि वो सरल हृदय नहीं है तो उसको सरल हृदय वालों ने बताया हुआ उपदेश भी उसको ग्रहण नहीं होता। यह तो सदा ही कलुषित है, जहाँ बैठे हैं जहाँ खड़े हैं सदैव कलुषित चित्त है। इस जगत में कौन सी वस्तु ग्रहण करने योग्य है, संचय करने योग्य है, जिसके पीछे मायाचार किया जाए, यानी ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसके लिए मायाचार करे तो अच्छा है? क्योंकि किसी भी वस्तु से तो आपका कोई कल्याण हित ही तो है ही नहीं है। हितमय कल्याण में तो हम स्वयं हैं। बाहरी चीज के लिए मायाचारी करता है, जो झूठ बोलता है या जो अन्य कुछ करके वो मायाचारी करके हासिल करना चाहता है, तो ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसके पीछे वो मायाचारी करने से उसका कल्याण हो जाए? तो पर वस्तु से तो इसका कल्याण होने वाला ही नहीं है, ये कहना चाहते। फिर पढ़ते हो इसको, देखो। इस जगत में कौन सी वस्तु ग्रहण करने योग्य है, संचय करने योग्य है, जिसके पीछे मायाचार किया जाए? मायाचार से वस्तु का संग्रह भी नहीं होता है। यह तो एक भ्रम है कि मायाचार न करे, झूठ न बोले, चालाकी न करे तो धन न आएगा। ये तो आम तौर पर सब जगह सुनने को मिलता है। व्यापार धंधा करना है तो मायाचारी करनी पड़ेगी, झूठ तो बोलना पड़ेगा, उसके बिना धन थोड़ा ही आता है। तो धन वो झूठ बोलने से आता है ना, पाप करने से धन आता है कि नहीं आता? वर्तमान में अरे धन आता है तो पूर्व के पुण्य से आता है, और उसके लिए वर्तमान में चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, जो कोई मायाचारी कर रहा है तो नया पाप बांध रहा है, उससे तो पाप बंधेगा, धन उसके कारण नहीं आ रहा है, ये मान रहा है कि उसके कारण धन आ रहा है। यह भेद कैसे पड़ गया है कि कोई लखपति है, करोड़पति है, कोई भिखारी है? क्या यह चालाकी का, चतुराई का भेद है? अरे यह सब पूर्व कर्म कृत भेद है। अभी बात आई ना, ये जो अभी वर्तमान में जो संयोग है वो पूर्व कर्म के उदय में मिल रहे हैं। जिसका जैसा पूर्वकृत पुण्य है उसके अनुसार समागम मिला है। तो स्वतः ही जिस अपेक्षा से भेद है वही अपेक्षा सर्व समागमों के मिलाने का कारण बनती है। मायाचार से दूषित हृदय में तृप्ति, संतोष, दया, धर्म ये नहीं ठहर पाते हैं, यानी उसमें कभी तृप्ति नहीं होगी। मायाचार से ही करना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं दूसरों को। अब लोभ पाप, छठा पाप है लोभ। लोभ पाप का बाप बखाना ऐसी प्रसिद्धि भी है। लोभ सर्व प्रकार के पापों का जनक है, इसमें तृष्णा भाव है। इस तृष्णा में यह मनुष्य पाई हुई संपदा को भी आराम से नहीं भोग सकता। इतनी संपत्ति है कि वो तो भोगने से भी कम नहीं होने वाली, परंतु संतोष नहीं है तो उसमें समाधान उसमें भी नहीं है, तो है उसको भी वो शांति से नहीं भोग पाता। ये कहना क्या कहते, देखो, तृष्णा में, ये तृष्णा के पीछे वो दुखी है, इसलिए पाई हुई जो है उसके पास संपदा उसको भी आराम से, शांति से, संतोष से भोग नहीं पाता। जितने वर्तमान में साधन है भली प्रकार खा पी सकते हैं और धर्मदान के लिए भी अवसर है, इतनी संपदा है, लेकिन इससे दूनी हो जाए, इतना लोभ और हो जाए, लाभ लाभ इतना लाभ और हो जाए, इस ओर दृष्टि होने के कारण खाने पीने का सुख भी किरकिरा हो जाता है। क्या कहा, वर्तमान में संपत्ति है, खा पी आराम से खा पी सकता है, भोग सकता है, अरे दान भी कर सकता है, इतनी संपत्ति है, तो संपत्ति दूनी करने के पीछे वो पागल है। तो कहते वो चिंता में वो शांति से खा पी भी नहीं सकता, जैसे भूत पीछे लगा ऐसा दौड़ता है सुबह से रात।
यानी सब्जियां इतनी महंगी हो गई है, खाने के टाइम में उसके भाव ख्याल में आते हैं तो सब किरकिरा हो जाता है खाने का।
अच्छा है ना, वो लक्ष्मी जाती है ना, संचय नहीं होती तो अच्छा है। क्या पता है, इसलिए हम बाजार में जाते नहीं खरीदी करने को, आराम से खाते हैं। वर्तमान संपदा का भी आराम नहीं लिया जा सकता, यूं इस पाप से भी दुख ही होता है। आनंद का कारण धर्म, पाप से तो दुख ही होता है किंतु धर्म से सुख होता है। अब सच्चा धर्म तो अपने आत्मा का अनुभव है, धर्म में एकमात्र धर्म तो अपने आप के शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप का अनुभव करना है, यही एकमात्र धर्म है। और इस ज्ञानानुभूति से शुद्ध आनंद प्रकट होता है। लोग सुख को ही महत्व देते हैं, इसलिए आचार्य देव चूंकि इन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इस कारण इन्हें सुख शब्द से ही समझाते हैं। यद्यपि सुख अच्छी चीज नहीं होती है क्योंकि इसमें कलुषता है। क्या कहते हैं? ये सुख है ना, लौकिक सुख की बात है, वो थोड़ा ही सच्चा सुख है, फिर भी लोग उसको चाहते हैं, इसलिए उसी भाषा में उन समझाना चाहते हैं। ख मायने इंद्रिय और सु मायने सुहावना। जो इंद्रिय को सुहावना लगे उसे सुख कहते हैं। सुख और दुख, इंद्रियों को सुहावनी लगने वाली बात पवित्र नहीं है, वह एक कलुषित प्रवृत्ति है। लेकिन लोग सुख को ही एक हितरूप समझते हैं, अतः हितरूप तो है आनंद भाव। फिर भी आनंद भाव को ही आचार्य देव सुख शब्द से यहाँ बोलते हैं। धर्म से आनंद प्रकट होता है, आनंद का अर्थ है समृद्धिशालिता। आत्मा में जितनी भी ज्ञानादिक शक्तियां हैं, वे सब पूर्ण विकास रूप हो जाए, ऐसी समृद्धि प्रकट हो जाए, इसका नाम है आनंद। ज्ञान विकास का अविनाभावी सुख विकास। देखो, ज्ञान के साथ वो अतीन्द्रिय आनंद कहते, अतीन्द्रिय सुख कहते, उसको भी सुख कहने का प्रघात है, क्योंकि हम सुख और दुख नाम से परिचित हैं, इसलिए आचार्य भी उसी नाम को लेकर यहाँ समझाना चाहते हैं। ये इंद्रिय सुख की बात नहीं है, अतीन्द्रिय की बात। जहाँ संपूर्ण ज्ञान होता है वहाँ आकुलता नहीं रहती। आकुलता होने का कारण ज्ञान की कमी भी है, भी यानी वो भी एक वन ऑफ द रीजन, क्योंकि हमें किसी बारे में जानने की उत्सुकता है, जब तक वो उत्सुकता पूरी नहीं, उत्सुकता है ना, क्या वो आकुलता है, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा होता है ना, कोई एक्सीडेंट हुआ, अरे क्या हुआ, जानने की आकुलता है, क्या हुआ, कौन है, किसको मार लगा, उम्र तो नहीं गया ना, कैसे हॉस्पिटल में ले जाए, यानी ये सब जानने की आकुलता है। हमने सुन लिया कहीं कुछ हो गया तो टीवी ऑन करके पहले न्यूज़ देखते, क्या हुआ था वहाँ पर, अपने यहाँ हुआ था वो बॉम्ब ट्रेन में, अपने यहाँ तो अपने स्वाध्याय चल रहा था, तो सुभागमल हमारे यहाँ आते थे, उनके घर से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे 7 बॉम्ब स्फोट हुए, इतना हुआ है, वैसा हुआ है, हमको कुछ पता नहीं, फिर टीवी लगा के देखा क्या हुआ। ये क्या होता है, जानने की आकुलता, इसी को कह रहे। और क्रिकेट मैच भी क्या हो रहा है क्या? अच्छा देखो, आकुलता होने का कारण ज्ञान की कमी भी है, भी लगाया, यानी अन्य भी कारण होते हैं आकुलता के।
लेकिन यहाँ मिथ्या ज्ञान को इतना वजन नहीं किया और अवैध अज्ञान को वजन दिया।
यहाँ उदयक वगैरह बात नहीं कर रहे, अभी इन जनरल बात चल रही है, यानी जहाँ संपूर्ण ज्ञान है वहाँ आकुलता नहीं है, तो ज्ञान की कमी भी आकुलता का कारण है, इतनी बात। ज्ञान तो हो कम और जानने की इच्छा लगी हो, तो आकुलता तो इच्छा से है ना, क्यों? क्योंकि उतना जानना नहीं हो रहा है, इस बार ऐसा नहीं हो, ऐसी स्थिति में आकुलता हुआ करती है। किसी भी वेदना में आकुलता बढ़ने का कारण यह है कि यह पता नहीं है कि कल क्या हो जाएगा। ये तो सबको विदित है कि डॉक्टर के पास जाता है वो, जो उसकी पीड़ा है उसके कारण ज़्यादा नहीं लोग जाते हैं, भय के कारण जाते हैं कि क्या होगा बाद में, न जानो ये बढ़कर मर तो न जाऊँ मैं, है ना, इसके लिए उसकी आकुलता ज़्यादा है और इसके लिए उसके लिए ज़्यादा जाते हैं। वेदना तो है भले, पर उसको तो सह भी सकते हैं, परंतु आगे क्या होगा, ये बढ़ तो नहीं जाएगा, क्या भयंकर बीमारी तो नहीं है ना, इस कारण ज़्यादा जाते हैं। यही बता रहे हैं यहाँ पर, वेदना में आकुलता बढ़ने का कारण, केवल वेदना से आकुलता होती है परंतु वो ज्यादा आकुलता क्यों होती है? कल क्या होगा इस विचार से। यदि यह विदित हो जाए कि कल यह स्थिति होगी तो वेदना में वृद्धि नहीं हो सकती अथवा वेदना भी नहीं रहेगी। ये पता है कि दो चार दिन में ठीक हो जाएगा, उसमें कुछ बात नहीं है, दवा नहीं भी करो तो आराम हो जाएगा, है ना। इसकी चिंता नहीं रहती उसको, फिर थोड़ी बहुत वेदना है तो गौण हो जाती है उसकी। ज्ञान तो हो कम और बनी हो जिज्ञासा, तब आकुलता हुआ करती है। जहाँ ज्ञान भी पूर्ण विकसित है, दर्शन आदि समस्त गुण विकसित है, वहाँ उसी के साथ यह आनंद गुण भी पूर्ण विकसित हो जाता है। यानी ज्ञान दर्शन के साथ साथ इसका भी विकास होता है। धर्म से आनंद प्रकट होता है। अनहोनी को होनी बनाने के विकल्प में क्लेश की प्राकृतिकता। अनहोनी को होनी बनाने के भाव में नियम से क्लेश ही होगा। जो होने वाला ही नहीं है वो तो करके दिखाऊंगा, यानी उसके पीछे वो तो नहीं नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार परिणमना चाहता है शरीर को या परद्रव्यों को। जो बात नहीं हो सकती है उसे हम होनी बनाना चाहे तो उसका फल केवल क्लेश है, आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा हो सकता नहीं है। हम धन संपदा को अपने से अभिन्न बनाना चाहते हैं और वह भिन्न रहती है। हम परिजनों को सदा अपने ही निकट रखना चाहते हैं किंतु वे रह नहीं सकते क्योंकि वे भिन्न हैं। ऐसे ही सर्वत्र घटाते जाइए। अन्य परवस्तु के साथ हरेक के साथ जिसका संयोग है उसका तो वियोग है ही, और उसका संयोग भी निश्चित समय तक है, और हम वो कायम ही बनाना चाहते हैं। अनहोनी को होनी बनाने का प्रयास केवल कष्ट रूप है, और जितने भी जीव दुखी है वे सब केवल इसी रोग से दुखी हैं। ज्ञातृत्व संपदा। जो जैसा है उसे उसी रूप से जानते जाइए, चाहे कुछ नहीं अपने लिए। अरे यथार्थ जानने से बढ़कर और वैभव भी क्या है? क्यों हम कुछ चाहे? यानी हम तो कुछ अन्य में कुछ कर ही नहीं सकते, बस जानना इतना मात्र हम करते हैं। तो यथार्थ हम जान लेंगे तो यही हमारा वैभव है। जो जैसा है वैसा ज्ञान में आता रहे, इससे बढ़कर और क्या संपदा। जब किसी प्रकार की चाह नहीं रही तो वहां आकुलता का फिर काम ही क्या है? तो धर्मों में एकमात्र धर्म यही है, निज ज्ञानानंद स्वरूप में अपनी प्रतीति और अपना आचरण हो। यानी मैंपना किसमें स्थापित हो जाए? तो अपने ज्ञानानंद स्वरूप में, और उसी में लीनता हो, अपना आचरण होगा अर्थात, तो उसी में लीन रहे, अपूपयोग उसी में लगाए, अर्थात मात्र समस्त वस्तुओं के ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए हमारा जो भी यत्न होता है वह सब धर्म कहा जाता है। धर्म परंपरा में परिस्थितियां। धर्म की परंपरा में कुछ पुण्य, सत्संग में बैठना, मंदिर में आना, पूजन करना, आरती करना, भजन बोलना, कुछ दिल इस ओर आना, यहाँ से उसका प्रारंभ होने लगता है। कुछ दिल इस ओर आना यानी वो मन रुचि उसकी बार। यद्यपि ये सब बातें धर्मरूप अभी नहीं हुई है, इसको धर्म नहीं नाम देंगे, किंतु इन बातों में लगकर फिर इससे और आगे बढ़कर अब शास्त्राभ्यास किया, ज्ञानार्जन किया, अर्जन करना यानी हासिल करना, ज्ञान उपार्जन करना, हासिल करना, वस्तु का तत्व समझने लगे, मनन किया, चिंतन किया, और आगे बढ़ो, अब इस ओर ध्यान आने लगा, अब यह उपयोग अपने स्रोत भूत इस ज्ञान प्रकाश को ग्रहण करने लगा। क्या कहना चाहते? ये कहाँ से शुरुआत किया? वो तो धर्म सत्संग में जाते थे, मंदिर जाते थे, भजन करते थे, पूजा वगैरह वगैरह करते थे, अब कहीं उसको शास्त्र श्रवण तत्व श्रवण लाभ हुआ, उस पर विचार करने लगा, वही ठीक है ऐसा उसने निर्णय किया, तो आगे शास्त्राभ्यास उसने किया, ज्ञानार्जन किया, वस्तु का तत्व वस्तु स्वरूप समझने लगा, मनन चिंतन करते करते और आगे बढ़ा। अब क्या उपयोग कहाँ चला जाएगा? उपयोग का अपना जो ओरिजिन है, उपयोग कहाँ से निकला है, उसको कहीं उसका स्रोत, उसका उगम कहाँ से हुआ है, उपयोग निकला कहाँ से? अपनी चैतन्य भूमि में से। तो कहते उपयोग अपने स्रोतभूत इस ज्ञान प्रकाश को ग्रहण करने लगा, जहाँ से उपयोग निकला है वही हमारा ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान प्रकाश है, उसको जानने लगा। और इन स्थितियों में जिस क्षण समस्त परद्रव्यों का उपयोग छूट जाए, विकल्प हट जाए और दृढ़ता से इसी स्वरूप को स्वीकार कर ले कि यह ही मैं हूँ ऐसा मान ले, तो वहाँ धर्म प्रकट होता है। यानी वो तो केवल आत्मा में ही उसका रमण होता है, उसी क्षण उसको आत्मा का अनुभव हो जाता है। पाप से हटने व धर्म में लगने का आदेश। पाप से दुख होता है वह धर्म से आनंद होता है। यहाँ सुख शब्द नहीं डाला, वो आनंद है, यानी कि यह सच्चा यथार्थ तो धर्म की बात है। यहाँ पर यह बात सर्वजनों में सुप्रसिद्ध है, इस कारण जो आनंद के चाहने वाले हैं उन्हें उतना ही तो काम करना है कि जो दुखकारी उपाय है उनका त्याग कर दे। और जो आनंदकारी उपाय है उनका पालन करें। हाँ बोलो। गुण है और उसकी पर्याय है, पर्याय तो गुण की होगी ना, गुण के बिना तो नहीं होगी। सुख या आनंद गुण है तो उसके उसके गुण की वो पर्याय, गुण की ही पर्याय है। सुख गुण कहो या आनंद गुण कहो एक ही बात है। आनंद में तो वैसे अनंत गुणों का रस बताया जाता है, उसको आनंद में ले लेते हैं तो है, तो वो सुख भी सुख नाम से भी उसी को कहते हैं। अतीन्द्रिय सुख कहो आनंद कहो बात एक ही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गुण के बिना तो पर्याय होगी ही नहीं, गुण के बिना पर्याय ही नहीं होगी। देखो दुखकारी उपाय है, वो विवक्षावश उसमें भेद भी करते हैं या एक भी कहेंगे तो कोई बात नहीं है। जो दुखकारी उपाय है उनका त्याग कर दे और जो आनंदकारी उपाय है उनका पालन करें। यह बात कितनी स्पष्ट है, किसी से भी पूछ लो। क्यों भाई, तुम यह मेरा पाप ले लोगे ना, तो वह स्वीकार न करेगा। वो तो वाल्मीकि की कथा मालूम है सबको। पाप का नाम भी इतना अनिष्ट है कि लोग इतना कहने में भी भय खाते हैं कि अच्छा तुम यह काम कर लो पाप हमारे लग जाएगा। मुझे समंत भद्र महाराज की याद आती है, कुंभोज में थे समंत भद्र महाराज और बहुत बार जाते थे हम वहाँ दर्शन वगैरह के लिए। तो अन्य लोगों को तो ये चाय मत पियो, सिगरेट मत पियो, ऐसा मत करो, ऐसा कुछ कहते थे। हमें तो कहते स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो। उन्होंने कहा कहाँ टाइम मिलता है, ऐसा डिस्पेंसरी में जाती है मेरा दवा खाना है या ऐसा है, टाइम नहीं मिलता। जहाँ कभी टाइम मिलेगा तभी पढ़ना, भले आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एसटी में जा रहे हैं, वहाँ बस में बैठे हो वहाँ पढ़ो, डिस्पेंसरी में बैठे हो वहाँ पढ़ो, जब टाइम मिलेगा। जितना पाप लगेगा ना वो मुझे लगने दो, आप स्वाध्याय करो, ऐसा उनके शब्द है। क्योंकि हम कहते हैं यहाँ शास्त्र को नहीं छूना, वहाँ नहीं छूना, ऐसा नहीं पढ़ा, वैसा नहीं पढ़ना, ऐसा हाथ धोके जो कुछ पाप लगेगा वो मेरे, मैं उसका भागीदार, यानी मैं स्वयं वो पाप का, यानी वो पाप मुझे लगेगा, आप स्वाध्याय करना, ये उनके शब्द थे। और स्वाध्याय करो, यानी उन्होंने स्वाध्याय की इतनी नींव डाली, पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया, स्वाध्याय की परंपरा बहुत चलाई। क्योंकि स्वाध्याय से ही सब कुछ सच्चा धर्म ख्याल में आएगा, ये पता था उनको। हम तो इसको ये नहीं करना वो नहीं करना, बस इतने में धर्म मानते हैं। हमें कितने ऐसे भी लोग मिले हैं हमारे रिश्ते में वगैरह कि हम बचपन में स्वाध्याय करना चाहते थे, फिर माँ बोलती इसको मत छुओ उसको मत छुओ इधर मत बैठो उधर मत, तो हम छोड़ देते। एक तो समझता नहीं है, शास्त्र खोल के बैठने से शास्त्र की भाषा नहीं समझ में आती है, और कई उत्साह से कोई कपाट में से निकाल के ये ऐसा मत करो वैसा मत करो इसे, तो इसी में तो फिर चले जाते छूट जाती है।
ये बात जैन तत्व परिचय में लिखी है।
हाँ।
और वो हमारा चचेरा भाई ही था, उसके माँ उसको हमेशा बोलती थी पहले ना धो के आना फिर बैठना, ऐसे शास्त्र को हाथ मत लगाना।
इनके भाई थे रमेश भाई, तो उनके ऐसे वो कहते, उन्होंने स्वयं कहा कि देखो ये बात एक दो पत्र में ही उन्होंने, वो तो पहले मैगजीन में आती थी ना, तब कहा था उन्होंने। कितनी सरल बात है, अभी मुझे समझ में आती है, तो मैं अभी इसके बाद मैं कुछ भी शास्त्र पढ़ूंगा तो भी मुझे समझ में आ जाएगी। बचपन में हमको ये मौका ही नहीं मिलेगा मिला, क्योंकि हमारी माँ ऐसा ही कहती थी इधर मत छू उधर मत छू, बस उसी में रह गए हम। देखो यहाँ क्या कहते हैं इससे। हाँ
ऐसी बात है के इधर मत छुओ उधर मत छुओ वाली जो बात है, वैसे ही ये पर्टिकुलर लोग को ही सुनना है, अन्य लोगों को नहीं सुनना है ऐसा बताना, या आज्ञा लिए बिना ये नहीं करना वो नहीं करना, ये सारी बातें क्या रिस्ट्रिक्शंस है ना। अभी तीर्थंकर परमात्मा समोचरण में तीरंचों को भी समझा देते, देवों को भी समझाते थे, मिथ्या दृष्टि मनुष्यों को भी समझाते, सबको। मुझे ये कहना कि वह ऐसा थोड़ी था कि इसको आने का इसको अलाउड है इसको नहीं अलाउड है, खाली नारकी आते ही नहीं थे इसलिए वो नहीं आए। लेकिन ये ऐसी कुछ उल्टी पुल्टी बात करते हैं तो लगता है कि ये क्या के लिए, मतलब प्रचार करने के लिए बैठे हैं या अपनी आवाज नहीं आ रही है।
हो गया हो क्या उनका, चलो अभी आगे बढ़ते। तो यहाँ कहते हैं कि लोग भय खाते हैं कि तुम हमारा यह काम कर लो हम पाप हमारे लग जाएगा, इससे यह जानो कि पापों से आनंद नहीं होता है। 52 पेज पर आए, आनंद तो धर्म से होता है, इस कारण सुखार्थियों का यह कर्तव्य। अभी सुखार्थी आनंदार्थी की बात है कि पापों को छोड़कर धर्म कार्य करे। अब आगे यह बताएंगे इस धर्म की परंपरा कहाँ से चली है और इसका जो मूल स्रोत है, मूल स्रोत का अर्थ है उसका जो उगम जहाँ से वो बात निकली है, उसकी उपासना में हम धर्म पालन में सफल हो सकेंगे इसको स्पष्ट करेंगे। सर्व प्रेत सति सत् सुखाप्ति मचिरा सर्व कर्म क्षयात् सद्वृत्तात् सच तच्च बोधनीयतम् सोप्यागमात् सश्रुते साक्षात्तात् सच सर्वदोषरहितो रागादयस्तेत्यत तं युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखदं संतश्रयन्तु श्रिये। सुख प्राप्ति के लिए प्रथम कर्तव्य, समस्त जीव उत्तम सुख की प्राप्ति को चाहते हैं। सर्व प्रेषति सत् सुख सत् सुखाप्तिम अचिरात, और उनकी यह एक यही कामना है कि मुझे शीघ्र ही उत्तम सुख प्राप्त हो। चिरात यानी दीर्घकाल, अचिरात यानी शीघ्र, शीघ्र मुझे प्राप्त हो। सा सर्व कर्म क्षयात, और उसकी प्राप्ति कैसे होगी, सर्व कर्म के क्षय से होगी। उत्तम सुख की प्राप्ति समस्त कर्मों के क्षय से होती है। सुख में बाधा देने वाला इन कर्मों का उदय है। समस्त कर्मों का क्षय सच्चारित्र से हुआ करता है। सेकंड लाइन में ना सद वृत्तात्, वृत्त यानी वो चारित्र की बात, सद्वृत्तात् सच तच्च बोधनीयतम, अपने आत्मा का आचरण आत्मा के स्वभाव के अनुरूप बने तो समस्त कर्मों का क्षय होता है। और यह सम्यक चारित्र शुद्ध आचरण ज्ञान में नियत है, यानी सम्यक ज्ञान के बिना वो नहीं हो सकता। फिर से समझते इसको, देखो शुरुआत से। सभी जो क्या चाहते तो उत्तम सुख की प्राप्ति चाहते हैं, और क्या कैसे तो ये मुझे शीघ्र प्राप्त हो ये चाहते हैं, मैं कोई विलंब नहीं चाहता उसके लिए। तो उत्तम सुख कैसे मिलेगा, तो समस्त कर्मों के क्षय से प्राप्त होगा, क्योंकि कर्मों का उदय है तो वहां तो उत्तम सुख नहीं मिल सकता। ये साता के उदय वाला सुख की बात नहीं चल रही है, ये सच्चे सुख की बात चल रही है। तो समस्त कर्मों का क्षय होना चाहिए तभी उत्तम सुख मिलेगा। तो समस्त कर्मों का क्षय कैसे होगा, सत चारित्र से होगा। ये चारित्र है वो अंतरंग में स्थिरता, पूर्ण रूप आत्मा में लीन हो जाना, वही सत चारित्र है। यानी शुभाशुभ भावों को दोनों को ही छोड़कर आत्मा में स्थिरता, जो हम कहेंगे श्रेणी चढ़ के अनंत पद प्राप्त होगा, सिद्ध पद प्राप्त होगा, उसकी बात है यहाँ पर। तो समस्त कर्मों का क्षय सत चारित्र से हुआ करता है। अपने आत्मा का आचरण,
देखो यहाँ पर सच्चारित्र का अर्थ होता है सच्चा चारित्र, सत्य यानी सच्चा, सच्चा यानी जिसमें अपने स्वरूप में एकाग्रता लीनता करके जो जीव रहता है, यानी जिसको सम्यक चारित्र कहते हैं वो सच्चारित्र है, उसके बगैर सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जितने अंश में स्वरूप में स्थिरता है उतने अंश में सुख भी है। यहाँ उत्तम सुख की जो बात कर रहे हैं वो तो पूरे पूरे मतलब जिसको कहते हैं केवल ज्ञान होने के बाद जो अतीन्द्रिय अनंत सुख प्राप्त होता है उसको सच्चा अनंत सुख कहेंगे। तो यहाँ पर जो कह रहे समस्त कर्मों का क्षय, यानी एक 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 करके जो कर्मों का क्षय होगा वो सच्चारित्र से हुआ करता है। यानी हम तो ऐसा समझते कि कर्मों को निकाल देना चाहिए, कर्मों को निकाल देना चाहिए। कर्मों को निकालने के लिए करना क्या है, तो अपने स्वरूप में एकाग्रता करना, यही आवश्यकता है। और ऐसे सब कर्म खत्म हो जाएंगे तो केवल ज्ञान होगा, अनंत सत्य की प्राप्ति होगी, उसमें वो उत्तम सुख की प्राप्ति है। यहाँ लिखा है ना अपने आत्मा का आचरण आत्मा के स्वभाव के अनुरूप बने, यानी जैसा मैं हूँ वैसा मेरे पर्याय में हो जाए तो समस्त कर्मों का क्षय होता है। और यह सम्यक चारित्र शुद्ध आचरण ज्ञान में नियत है, यानी ये शुद्ध आचरण की जो बात कर रहे हैं, यानी स्वरूप में स्थिरता, वह तो ज्ञान रूप कार्य चल रहे हैं ना, ज्ञान में है ये। तब आप बोले
हाँ, देखो यहाँ हमने अभी पढ़ा ना सम्यक चारित्र, ने तो आत्मा में रमणता जो है शुद्ध आचरण है वो ज्ञान में नियत है, यानी सम्यक ज्ञान से ही ये शुद्ध आचरण बनेगा। क्योंकि वो आत्मा को जाने बिना उसमें स्थिरता कैसे होगी, पहले तो हमें आत्मा को आगम से नक्की करना पड़ेगा, वो बात आएगी अभी। यहाँ तो पहले सम्यक ज्ञान है, शुद्ध आत्मा का अनुभव हुआ है, फिर उसमें स्थिरता हो जाएगी बारम्बार। तो सम्यक ज्ञान हो तो भला आचरण बन सकता है। भला आचरण वो बाह्य आचरण की बात नहीं है, भला आचरण जो सच चारित्र जो कहेंगे आता है वो है भला आचरण। भला आचरण है आत्मा में स्थिरता, आत्मा में एकाग्रता। और यह सम्यक अवबोध, अवबोध यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान आगम से प्रकट होता है, यानी आगम से हमें सही जानकारी मिलती है। आगम से यानी केवल शास्त्र पढ़ते पढ़ते आत्मा का अनुभव नहीं होता है, परंतु उसकी जानकारी हमें वहां से वो मार्ग हमें मिलता है, और फिर हम अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। आत्मा का अनुभव किया, आत्मा का ज्ञान हुआ, तो फिर उसमें एकाग्रता हो जाएगी, फिर वो चारित्र होगा, उसी में स्थिरता करने से फिर कर्मों का क्षय होगा और सच्चा परिपूर्ण आनंद मिल जाएगा। हम उल्टा उल्टा देख रहे हैं ना, क्योंकि हम उसके ओरिजिन तक पहुंच रहे हैं। हमें सच्चा आनंद कब होगा, सर्व कर्म के क्षय होने पर। कर्म का क्षय कैसा होगा? सच्चारित्र से। सच्चारित्र कैसा होगा? सम्यक ज्ञान से। सम्यक ज्ञान से पहले के स्टेप क्या है? आगम से हमें वो मिलेगा ज्ञान, यही कह रहे हैं। सम्यक अवबोध आगम से प्रकट होता है। शास्त्र से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये आगम शास्त्र श्रुति से प्रकट होते हैं। श्रुति यानी यहाँ भगवान की वाणी, उसको श्रुति कहा। श्रुति का अर्थ है भगवान का सातिशय वचन, क्योंकि आगम की रचना कब हुई? भगवान की वाणी सुनकर गंधर्व ने की, फिर आचार्य परंपरा से चली आई, तो उसका ओरिजिन कौन है? तो भगवान की वाणी है। इसका नाम दिव्य ध्वनि भी है और वह ध्वनि आप्त से प्रकट होती है। उनको कहते हैं आप्त, जिनकी दिव्य ध्वनि होती है उनको आप्त कहते हैं। अरिहंत भगवान आप्त कहते हैं पहुंचे हुए को, यानी जिन्होंने प्राप्त कर दिया वो आप्त हैं। क्या प्राप्त किया है? अर्थात जो वीतराग और सर्वज्ञ हो, आप्त समस्त दोषों से रहित होता है, तब सुख की प्राप्ति के अर्थ सुख की परंपरा के मूल निमित्त कारण हुए आप्त सर्वज्ञ देव। कहाँ तक पहुँचे हम? हम उसके मूल निमित्त यानी कारण की तरफ पहुँच गए, तो अरिहंत देव तीर्थंकर भगवान। अतः हे सर्व सज्जनों, सत सुख के अर्थ उनकी आराधना करनी चाहिए। आराधना करने से वो प्रसन्न होकर कोई आपको ऐसा आशीर्वाद देने वाले नहीं है। उनके द्वारा हमें यह आगम वगैरह जो प्राप्त हुआ है, इसके कारण हम उनकी पूजन करते हैं, क्योंकि वो मूल निमित्त है हमारे। हाँ बोलो। सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक श्रद्धा होती ही है, परंतु यहाँ चारित्र्य ने विशेष स्थिरता की बात है। और यहाँ ज्ञान से ही वो श्रद्धा जो प्रकट होगा, उसका भी मूल कारण है आगम का ज्ञान, उसके बिना वो श्रद्धा भी नहीं प्रकट होगी। इसलिए वहाँ उसको गौण करके हुए वो लिखा नहीं, इसलिए वो होती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ कहने का प्रयोजन क्या है? तो मूल स्रोत उपदेश किसका मिला है उसकी बात है। सम्यक दर्शन भी होता है, उसमें भी ज्ञान ही, आगम ज्ञान ही उसमें कारणभूत है। ज्ञान में ही वो निर्णय होगा, ज्ञान में ही वो सब नक्की करेंगे हम तत्व का निर्णय, और फिर वो तभी उसको सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ प्रकट होगा। शुद्धानंद मार्ग प्राप्ति का मूल निमित्त इस छंद में हम आप सबके लिए सुख प्राप्ति का मूल निमित्त कारण बताया गया है। उपादेय तो सुख पाने के लिए हम स्वयं ही है। प्रभु यदि दूसरों को तारते हो और यह जीव स्वयं अपनी बुद्धि योग्य न बनाता हो तो यह प्रभु किसको तारे, किसको न तारे? यह उनमें पक्ष हो जाएगा, यानी वो तो पार्शलिटी हो जाएगी, किसको तारना और किसको नहीं तारना। तो ये अपने उपादान से कार्य होता है, जब कार्य होता है तब उन पर निमित्त का आरोप आता है। ये तो हम निमित्त उपादान बहुत बाहर पड़े हैं, है ना। प्रभु तो तीनों लोक के ज्ञाता है और आनंद में मग्न रहा करते हैं, उनका तो आदर्श स्मरण में आ जाए, यही उनका प्रसाद है। तथा इस प्रसाद में हम अपने आप ही अपने में शक्ति को प्रकट करते हैं। प्रभु ने जो मार्ग अपनाया है, उन्होंने जैसा प्रकट किया है, उनका स्मरण करते हैं, तो हम भी अपने से ही करने वाले हैं। ये बात समझ में आती, वो हमारे लिए आदर्श है। तो हम अपने आप ही अपने में शक्ति को प्रकट करते हैं और उस शक्ति के प्रताप से सुख प्राप्त कर लेते हैं। फिर भी इस छंद में जो परंपरा दिखाई है, उससे आप यह जानेंगे कि मूल निमित्त कारण हम सबके आनंद में लगने का भगवान सर्वज्ञ वीतराग देव है। इसलिए वीतराग की इतनी महिमा आती है, भगवान को नमस्कार करते हैं उठते पहले में, उसका कारण ये है, मूल निमित्त कारण वे है। पर निमित्त तब कहेंगे ना हम, उसका अगर उपयोग करेंगे तब निमित्त, नहीं तो काहे का निमित्त। हमने नाम लिया सुबह उठते भगवान का, दिन भर पाप में लगे तो थोड़े ही निमित्त है उसके। फिर नाम लेने का प्रयोजन भी क्या है, वो तो एक हमने एक रूटीन बना दिया, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। आप्तदेव, जो कोई श्रमण, श्रमण यानी मुनिराज, आत्म साधना करके राग द्वेष से रहित तो होकर, आत्म साधना करना यानी पहले तो आत्मा का अनुभव कर लिया उन्होंने, समय दर्शन ज्ञान, उसको भी सम्यक चारित्र तो कहते हैं, पर अधिक स्थिरता के लिए जिसको चारित्र कहने में आता है, वो पहले सम्यक नहीं था वो बात नहीं है, परंतु अधिक मुनि योगी जो स्थिरता होती है, तो कहते हैं उसको राग द्वेष से रहित तो होकर अपने ज्ञान का पूर्ण विकास कर लेता है, वह महाश्रमण सकल परमात्मा हो जाता है। ये सकल किसको कहते हैं मनीषा बेन, आपको मालूम है सकल परमात्मा क्या होता है? सिद्ध, अच्छा। और निकल परमात्मा इन्हें, कल का अर्थ क्या होता है? सकल इन्हें परिपूर्ण, ऐसा अर्थ नहीं उसका। कल इन्हें शरीर वाले, शरीर सहित परमात्मा, और निकल इन्हें शरीर रहित परमात्मा। अब बताओ सकल यानी अभी क्या अर्थ होगा उसका? शरीर सहित परमात्मा कौन है? परमात्मा केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान, अरिहंत भगवान ने संयोग केवली अयोग केवली दोनों, उनको कहेंगे सकल परमात्मा, और सिद्धों को कहेंगे निकल परमात्मा, कल रहित, कल यानी शरीर। यहाँ लिखा है देखो, कल का अर्थ है शरीर, व स का अर्थ है सहित, अर्थात शरीर सहित परमात्मा, साकार परमात्मा या सगुण ब्रह्म। शरीर तो तब विमुक्त होगा जब आयु के निषेक समस्त खिर जाएंगे, क्योंकि वो जितनी आयु है उतनी तो रहकर बाद में तो आयु सहित आठों कर्मों का नाश होना चाहिए ना, नहीं तो आयु रहेगी तो क्या, जो आयु रहेगी तो शरीर भी रहेगा। जो मुक्त होता है उसे चरम शरीर ही कहते हैं, चरम यानी अंतिम, अंतिम शरीर वाले जीव उसको चरम शरीर ही कहेंगे। इनके शरीर का जब वियोग होगा तो शरीर कपूर की तरह उड़ जाएगा, यानी वो तो ऐसे परमाणु छूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, पर जब तक आयु है तब तक शरीर लगा हुआ है। किंतु आत्म साधना के प्रताप से उनमें वितरागता और सर्वज्ञता प्रकट हुई है, यानी जो मुनिराज ही है, शरीर है जो हमें, जो हम आहार विहार करने वाले मुनिराज, अब ऐसे मुनिराज जब अंतरंग में गुप्त हो जाते हैं, श्रेणी चढ़ते हम उसको कहेंगे, तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो मुनिराज का शरीर है तो केवली का भी शरीर दिखाई देगा कि नहीं देगा? वो अभी शरीर सहित वाले हैं, फिर भी उन्होंने वितरागता और सर्वज्ञता प्रकट कर दी। जो पुरुष वितराग है, सर्वज्ञ है और साथ ही तो उपदेशक है, उन्हें आप्त कहते हैं। ये आप्त शब्द जो उपदेश देने वाले अरिहंतों के लिए आता है, उनका नाम है आप्त। आप्त का शुद्ध अर्थ है पहुंचा हुआ। जो ज्ञान में सर्वोत्कृष्ट हो उसे पहुंचा हुआ कहते हैं। जिसने अपने ज्ञान का शुद्ध विकास कर लिया है उसे आप्त कहते हैं। अब उपदेश का मूल स्रोत इन सकल परमात्मा ने, चूंकि श्रमण अवस्था में यानी उनकी पूर्व मुनि अवस्था में अथवा इससे पहले लोगों के उपकार की भावना की थी, इसके पहले ने पूर्व भाव में वो तीन भाव से भी चेतन और प्रकृति बनती है, तो उस काल में उन्होंने लोगों के उपकार की, कैसा उपकार? ये जो उपदेश सुनाने का वो उपकार, ये धन देना वो उपकार नहीं होता है, किसी को धन देना खाना खिलाना वो उपकार की बात नहीं यहाँ पर। कैसे उपकार की भावना है कि ये जो क्यों दुखी है और वो सुखी कैसे हो, वो तो सच्चे उपदेश से हो, ऐसी जो उपकार की भावना है। इस कारण इनके इस प्रकार की प्रकृति का बंध हुआ कि सकल परमात्मा प्रभु हो जाने पर भी वचन योगवश उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। देख लो भैया, कर्मों का फल भी किस किस रूप में प्रकट होता है, भव्य जीवों के तो पुण्य का उदय है और प्रभु में पुण्य प्रकृति के उदयवश जो वचन योग चल रहा है, ध्वनि हो रही है, इसे कहते हैं श्रुति। वेद, श्रुति, स्मृति और पुराण चार बातें प्रसिद्ध हैं। वेद, श्रुति, स्मृति और पुराण, इनमें वेद नाम है केवल ज्ञान का, भगवान से वेद भिन्न नहीं है, सो भगवान ही वेद है। सकल परमात्मा का जो लोकालोक का जाननहार ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम वेद है। ऐसे वेद के अधिकारी सकल परमात्मा से श्रुति प्रकट होती है, इन्हें वेद से श्रुति प्रकट होती है। श्रुति का अर्थ है दिव्य ध्वनि, जिसे लोग सुने उसका नाम है श्रुति, और जो सर्वोत्कृष्ट हो, प्रभु परमात्मा की यह ध्वनि सर्वोत्कृष्ट श्रुति है। इस श्रुति को सुनकर गणेश, गण के ईश, गण ने मुनियों का जो समूह होता है उसको गण कहते हैं, इसके जो प्रमुख आचार्य गणधर भी कहेंगे, श्रुति को सुनकर गणेश जो बड़े उत्कृष्ट गुणों के पुंज, आचार्यों के भी ईश है, जिनका अपर नाम है गणधर, ये गणेश उस श्रुति को सुनकर स्मृति उत्पन्न करते हैं। गणधर कहो या गणेश को एक ही बात है, श्रुति को सुनकर स्मृति उत्पन्न करते हैं, अर्थात उस श्रुति से द्वादशांग रूप स्मृति बनाते हैं। फिर भी जगत के जीवों को आचार्य जनों ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश परंपरा से जो शास्त्र रचे जाते हैं, उन शास्त्रों का नाम है पुराण। यही समस्त पुराणों का मूल स्रोत है वेद, अर्थात प्रभु सर्वज्ञ देव का केवल ज्ञान। उस केवल ज्ञान में आप्त से श्रुति निकली है, उस श्रुति से द्वादशांग की स्मृति निकली है, और उनकी परंपरा में ये समस्त प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, चार विषयों में विभक्त पुराण यानी शास्त्र रचे गए हैं। यो आप्त देव की श्रुति से जो आगम का विस्तार हुआ है, उस आगम का अध्ययन करके भव्य जीव अपना समीचीन ज्ञान बनाते हैं। बहुत अच्छा बताया नहीं? अभी रुकेंगे हम यहीं पर, वो अभी किसी के कल्पना की उपज है, वो क्या पता अभी क्या क्या ये गणपति जो नहीं, उसके भी पहले हुआ ना, उन्होंने तो उसका उत्सव बनाया सार्वजनिक, ये तो अन्य मतियों के ये उपज है ना, उनके सभी भगवानों का ऐसा ही है ना, वो दत्त है या कुछ है उसकी आप सुनेंगे तो इसमें। अभी क्या है, रुकेंगे अभी हम यहाँ पर। जावानी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।